एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो भविष्य की उम्मीदों से तो भरी है, लेकिन हाँ, थोड़ी जटिल भी है और कभी कभी विवादास्पद भी लगती है। हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल की।
बिल्कुल, ये वो खास कोशिकाएं हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये चिकित्सा का पूरा नक्शा ही बदल सकती हैं। और इस दिलचस्प विषय को समझने के लिए हम आज प्रोफेसर जोनाथन स्लैक के काम को देखेंगे, जो एक जाने माने ब्रिटिश डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं।
हाँ, स्लैक इस फील्ड के दिग्गज माने जाते हैं और सुना है उनकी खासियत है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक बातों को भी काफी आसान भाषा में समझा देते हैं।
और देखिए, आज के दौर में ये विषय बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम आए दिन स्टेम सेल थेरेपी के चमत्कारी दावों के बारे में सुनते रहते हैं।
सही कहा, लेकिन सच क्या है, उम्मीदें कितनी जायज हैं और चुनौतियां क्या हैं, असल में ये समझना जरूरी है।
बिल्कुल, कभी कोई बीमारी के इलाज की खबर आती है तो कभी कोई नैतिक सवाल खड़ा हो जाता है। स्लैक का नजरिया, मुझे लगता है, हमें इस शोर से परे जाकर असल विज्ञान को समझने में मदद करेगा।
हाँ, उम्मीद तो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले प्रोफेसर जोनाथन स्लैक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मतलब, क्यों उनकी बात इस विषय पर इतनी अहमियत रखती है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक वैज्ञानिक है या कुछ और भी है?
देखिए, वो सिर्फ एक अकादमिक हस्ती नहीं है। उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी की और फिर दशकों तक भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी, फिर कोशिका विभेदन मतलब कैसे कोशिकाएं अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज होती हैं, और पुनर्जनन रीजेनरेशन यानी अंगों का दोबारा बनना, इन सब क्षेत्रों में बहुत गहरा काम किया है।
अच्छा।
और वो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ और यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के स्टेम सेल इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी जगहों पर अहम पदों पर भी रहे हैं।
अच्छा, यानी उन्होंने इस विज्ञान को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि इसे बनते हुए देखा है, इसमें योगदान दिया है। ये बात उनके नजरिए को जरूर एक खास गहराई देती होगी।
बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, अनुभव से आया हुआ संतुलन। वो दशकों से इस फील्ड में हैं, तो वो स्टेम सेल की जो अद्भुत संभावनाएं हैं उनको भी पहचानते हैं, और जो जमीनी हकीकत की मुश्किलें हैं उनको भी समझते हैं। उन्होंने लैब की खोजों को क्लिनिक तक पहुंचने की वो लंबी और अक्सर धीमी प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा है। इसलिए जब वो कुछ कहते हैं तो उसमें न तो वो बेवजह का उत्साह होता है न निराशावाद, वो तथ्यों पर टिके रहते हैं।
तो स्लैक अपने लेखन के जरिए असल में बताना क्या चाहते हैं? उनका मुख्य संदेश क्या है? सिर्फ विज्ञान समझाना या कुछ और?
उनका मुख्य लक्ष्य है स्टेम सेल विज्ञान के चारों ओर जो एक कह सकते हैं रहस्य का या कभी कभी सनसनी का माहौल बन जाता है, उसे दूर करना। मीडिया में अक्सर या तो इसे जादुई इलाज की तरह दिखाते हैं,
हाँ बिल्कुल,
या फिर सिर्फ नैतिक आपत्तियों पर ही फोकस रहता है। स्लैक इन दोनों सिरों से बचते हुए एक संतुलित वैज्ञानिक और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं।
मतलब वो हमें हेडलाइन से आगे ले जाकर असल विज्ञान और उसकी वास्तविक क्षमताओं और सीमाओं को समझने में मदद करते हैं, एक तरह से मिथबस्टर जैसा काम।
हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। उनका काम इस बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि भाई, ये स्टेम सेल क्या है, ये कैसे काम करती हैं, और चिकित्सा जगत के लिए इनका असली महत्व क्या है। स्लैक मानते हैं कि हाँ, इनमें असाधारण क्षमता है, लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि लैब की सफलता और मरीज के इलाज के बीच का रास्ता वो सीधा नहीं है। इसमें वैज्ञानिक बाधाएं हैं, तकनीकी चुनौतियां हैं और गंभीर नैतिक प्रश्न भी शामिल हैं। तो उनकी बातें एक गाइड की तरह है जो हमें तथ्यों, संभावनाओं और सिर्फ अटकलों के बीच फर्क करना सिखाती हैं।
चलिए अब विषय की गहराई में उतरते हैं। स्टेम सेल, स्टेम सेल, हम ये शब्द सुनते तो रहते हैं, लेकिन स्लैक के अनुसार ये कोशिकाएं आखिर होती क्या हैं? क्या चीज इन्हें शरीर की बाकी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से अलग बनाती है?
देखिए, स्लैक बताते हैं कि स्टेम सेल की दो सबसे खास पहचान है। पहली है आत्मनवीकरण मतलब सेल्फ रिन्यूअल। इसका मतलब है कि जब एक स्टेम सेल बढ़ती है तो वो कम से कम एक और स्टेम सेल जरूर बना सकती है, ताकि स्टेम सेल का वो पूल बना रहे, वो खत्म ना हो।
अच्छा, यानी अपनी कॉपी बनाने की क्षमता, समझ गया। और दूसरी पहचान?
दूसरी और शायद सबसे रोमांचक पहचान है विभेदन, डिफ्रेंसिएशन, यानी ये स्टेम सेल खास सिग्नलों के जवाब में मैच्योर होकर शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाएं बन सकती हैं, जैसे दिमाग की नस कोशिका यानी न्यूरॉन, या दिल की मांसपेशी कोशिका, या खून बनाने वाली कोशिका। स्लैक इन्हें कभी कभी एक खाली स्लेट या मास्टर चाबी की तरह बताते हैं जो शरीर की जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप ले सकती हैं।
तो ये क्षमता के आधार पर भी अलग अलग तरह की होती होंगी, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर स्टेम सेल कुछ भी बन सकती है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इनकी क्षमता के आधार पर ही इन्हें बांटा जाता है। सबसे शक्तिशाली हैं टोटीपोटेंट कोशिकाएं, जैसे कि निषेचित अंडा, जाइगोट। इसमें अकेले ही पूरा जीव बनाने की क्षमता होती है।
पूरा जीव?
अच्छा,
हाँ
हाँ। फिर आती हैं प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं, ये शरीर की लगभग कोई भी कोशिका बना सकती हैं, नस, त्वचा, हड्डी, खून, सब कुछ। लेकिन ये पूरा जीव नहीं बना सकती। भ्रूणीय स्टेम सेल्स यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स या ESCs वो इसी श्रेणी की हैं।
और तीसरी श्रेणी?
तीसरी है मल्टीपोटेंट कोशिकाएं, ये भी स्टेम सेल हैं, लेकिन इनकी क्षमता थोड़ी सीमित होती है। ये कुछ खास तरह की कोशिकाएं ही बना सकती हैं, आमतौर पर उसी ऊतक या अंग की जिससे वे जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में जो वयस्क स्टेम सेल होती हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स, वो ज्यादातर मल्टीपोटेंट ही होती हैं।
जैसे खून बनाने वाली सिर्फ खून की कोशिकाएं बनाएंगी?
बिल्कुल, वो दिमाग की कोशिकाएं नहीं बना सकती।
आपने भ्रूणीय स्टेम सेल्स ESCs का जिक्र किया, ये वही है ना जिनको लेकर इतना हल्ला हुआ था, काफी बहस हुई थी? इनकी क्या खासियत है और विवाद क्यों था?
हाँ, ये वही कोशिकाएं हैं। ये भ्रूण के बहुत शुरुआती चरण, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसके एक हिस्से इनर सेल मास से ली जाती हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी जबरदस्त प्लूरीपोटेंसी, मतलब किसी भी तरह की कोशिका में बदल जाने की वो अद्भुत क्षमता। इसी वजह से वैज्ञानिकों को लगा कि अरे वाह, इनसे तो पार्किंसंस, डायबिटीज, रीढ़ की हड्डी की चोट, ऐसी अनगिनत बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं।
लेकिन फिर वो नैतिक सवाल आ गए।
बिल्कुल, क्योंकि इन कोशिकाओं को निकालने की प्रक्रिया में उस शुरुआती भ्रूण को नष्ट करना पड़ता है, और यहीं से वो नैतिक और दार्शनिक बहस शुरू हुई। क्या एक संभावित मानव जीवन को नष्ट करना सही है, भले ही इरादा किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना हो? स्लैग इस बहस को बहुत संवेदनशीलता से देखते हैं। वो साफ करते हैं कि ये विज्ञान का नहीं, बल्कि नीतिता, मूल्यों और विश्वास का सवाल है।
ये वाकई एक मुश्किल नैतिक दुविधा थी। तो क्या इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो स्टेम सेल्स हैं, यानी वयस्क स्टेम सेल, उनका इस्तेमाल ज्यादा आसान है? क्या वो भी इलाज में कारगर हो सकती हैं?
हाँ, वयस्क स्टेम सेल्स, या जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं, वे हमारे कई ऊतकों में पाई जाती हैं। इनका मुख्य काम है उन ऊतकों की मरम्मत करना और उन्हें बनाए रखना। जैसे हमारी त्वचा, हमारी आंतें, हमारा खून, ये सब लगातार रिन्यू होते रहते हैं, और इसका क्रेडिट वयस्क स्टेम सेल को ही जाता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ना, जो लुकीमिया जैसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है।
आपने बिल्कुल सही कहा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में मौजूद हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स या HSCS वयस्क स्टेम सेल का सबसे क्लासिक उदाहरण है। ये हमारे खून की सभी कोशिकाएं बनाती हैं, लाल, सफेद, प्लेटलेट्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो असल में HSCS का ट्रांसप्लांट है, वो तो दशकों से इस्तेमाल हो रहा है, और ये सबसे स्थापित और सफल स्टेम सेल थेरेपी है।
और इसमें वो नैतिक विवाद भी नहीं है?
हाँ, नैतिक विवाद भी नहीं है, और इन्हें शरीर द्वारा अस्वीकार किए जाने का खतरा भी कम होता है अगर ये मरीज की अपनी हो। हालांकि ये बात भी सही है कि ये भ्रूणीय स्टेम सेल जितनी लचीली नहीं होती, मतलब ये हर तरह की कोशिका नहीं बना सकती।
तो वैज्ञानिक सिर्फ इन्हीं दो तरह की सेल्स पे काम कर रहे थे या और भी दिशाएं थी? जैसे आपने कहा, कुछ जीव अपने अंग दोबारा उगा लेते हैं, क्या उससे कुछ सीखने को मिला?
हाँ, पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन का क्षेत्र भी बहुत दिलचस्प है। सैलेमेंडर जैसे जीव अगर अपना पैर या पूंछ खो दें, तो उसे हूबहू दोबारा उगा सकते हैं। वैज्ञानिक सालों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा कैसे करते हैं, और क्या उस प्रक्रिया को हम इंसानों में किसी तरह जगा सकते हैं। इसी दौरान क्लोनिंग का विचार भी आया, खासकर थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का।
क्लोनिंग, ये शब्द सुनते ही तो डॉली भेड़ी आ जाती है, क्या ये वैसा ही कुछ था?
नहीं, स्लैक यहाँ फर्क साफ करते हैं। डॉली भेड़ रीप्रोडक्टिव क्लोनिंग का नतीजा थी, जिसका मकसद था पूरा का पूरा जीव बनाना। इंसानों में ये नैतिक रूप से अस्वीकार्य है, जाहिर है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग या SCNT, जिसका मतलब है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, उसका मकसद इंसान बनाना नहीं था।
अच्छा।
उसका मकसद था मरीज के लिए आनुवंशिक रूप से मिलती जुलती यानी जेनेटिकली मैच्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाना। तरीका ये था कि मरीज की कोई सामान्य कोशिका, जैसे त्वचा की कोशिका, उसका केंद्रक निकालकर एक खाली अंडाणु में डाल दिया जाए। इससे जो शुरुआती भ्रूण बनता उससे स्टेम सेल निकाली जाती जो मरीज की अपनी होती, इसलिए शरीर उन्हें खारिज नहीं करता। ये एक तरीका था इम्यून रिजेक्शन की समस्या से बचने का।
लेकिन ये प्रक्रिया भी जटिल लगती है और इसमें भी भ्रूण का इस्तेमाल तो था ही, फिर क्या हुआ? क्योंकि आजकल हम IPSCs के बारे में ज्यादा सुनते हैं।
और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 2006 में जापान के वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने एक ऐसी खोज की जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे खेल को बदल दिया। स्लैक इसे वैज्ञानिक भूकंप कहते हैं। यामानाका ने दिखाया कि आप किसी भी वयस्क कोशिका को ले सकते हैं, जैसे कि त्वचा की कोशिका, और उसमें सिर्फ 4 खास जीन डालकर उसे वापस प्लूरीपोटेंट अवस्था में रीप्रोग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल भ्रूणीय स्टेम सेल की तरह। इन्हें नाम दिया गया इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, यानी IPSCs।
कमाल है, यानी अब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाने के लिए भ्रूण की जरूरत ही नहीं रही। इसने तो नैतिक बहस का रुख ही मोड़ दिया होगा।
बिल्कुल, IPSCs की खोज ने न सिर्फ भ्रूणीय स्टेम सेल से जुड़े कई नैतिक सवालों को एक तरफ कर दिया, बल्कि इसने अनगिनत नए रास्ते खोल दिए। अब वैज्ञानिक किसी भी व्यक्ति की कोशिका से, चाहे वो स्वस्थ हों या बीमार, IPSCs बना सकते हैं।
हाँ,
इन कोशिकाओं से वे उस व्यक्ति की बीमारी को लैब में मॉडल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं डिजीज इन अ डिश, दवाओं का परीक्षण कर सकते हैं और भविष्य में शायद उसी व्यक्ति के लिए खास तौर पर बनाई गई कोशिका थेरेपी विकसित कर सकते हैं बिना इम्यून रिजेक्शन के डर के। इसने व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज मेडिसिन की संभावना को एकदम से पंख लगा दिए।
ये तो हुई उम्मीदों की बात। क्या स्टेम सेल का कोई अंधेरा पहलू भी है? क्या ये बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं?
हाँ, एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक क्षेत्र है कैंसर स्टेम सेल हाइपोथेसिस। ये सिद्धांत कहता है कि कई ट्यूमर के अंदर कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कैंसर स्टेम सेल कहते हैं। माना जाता है कि यही कोशिकाएं ट्यूमर को शुरू करती हैं, उसे बढ़ाती हैं और अक्सर जो पारंपरिक इलाज होते हैं जैसे कीमोथेरेपी, उसके बाद भी बची रह जाती हैं। और यही बची हुई कोशिकाएं बाद में कैंसर के दोबारा लौटने, यानी रिलैप्स, या शरीर में फैलने, मेटास्टेसिस का कारण बनती हैं।
बाप रे, यानी ये दुश्मन की सेना में छिपे हुए कमांडर की तरह हैं। इन्हें निशाना बनाना तो बहुत मुश्किल होता होगा फिर।
बहुत मुश्किल। ये कैंसर स्टेम सेल्स अक्सर धीमी गति से विभाजित होती हैं और उनमें इलाज के प्रतिरोध की क्षमता भी ज्यादा होती है। इसलिए कैंसर रिसर्च का एक बड़ा फोकस अब इन कैंसर स्टेम सेल को पहचानने और खत्म करने के तरीके खोजना है। अगर हम इन्हें निशाना बना सकें तो शायद कैंसर का ज्यादा स्थायी इलाज संभव हो पाए।
और अगर हम इलाज की सकारात्मक संभावनाओं पर वापस लौटें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और IPSCs के अलावा किन बीमारियों में स्टेम सेल थेरेपी से वास्तविक उम्मीदें हैं, जहां क्लिनिकल ट्रायल वगैरह चल रहे हैं?
कई क्षेत्रों में काम चल रहा है। स्लैक बताते हैं कि आंखों की बीमारी, मैक्यूलर डिजेनरेशन, जिससे उम्र के साथ नजर कमजोर होती है, उसके इलाज के लिए रेटिना कोशिकाएं बनाने पर ट्रायल चल रहे हैं। पार्किंसंस रोग के लिए डोपामाइन बनाने वाली नस कोशिकाएं ट्रांसप्लांट करने की कोशिश हो रही है।
अच्छा।
रीढ़ की हड्डी की चोट, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी के मरीजों में तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी स्टेम सेल का परीक्षण हो रहा है। और Type 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं बनाने पर भी काफी काम चल रहा है।
ये सुनने में तो बहुत बहुत उत्साहजनक लगता है।
उत्साहजनक है, लेकिन स्लैक यथार्थवादी रहने पर जोर देते हैं। ये सभी बेहद जटिल बीमारियां हैं। लैब में सफलता मिलना एक बात है और उसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से मरीज तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। इसमें सालों बल्कि दशकों लग सकते हैं। और यहीं पर वो स्टेम सेल टूरिज्म के खतरे से आगाह करते हैं। दुनिया भर में कई ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जो बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के महंगे और अप्रमाणित स्टेम सेल इलाज का दावा करते हैं। ये न सिर्फ मरीजों के पैसे बर्बाद करते हैं बल्कि खतरनाक भी हो सकते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
बिल्कुल, इसलिए किसी भी इलाज के लिए हमेशा पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण और जो नियामक संस्थाएं हैं उनकी मंजूरी देखना जरूरी है।
बिल्कुल सही। तो अगर हम स्लैक के नजरिए से इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या होंगे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? क्या टेकअवेज हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और जरूरी बात है वादा बनाम हकीकत को समझना, प्रॉमिस वर्सेस रियलिटी। स्टेम सेल में क्रांति लाने की क्षमता है, यकीनन है, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। प्रगति धीमी होती है और हमें बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से सावधान रहना चाहिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया का सम्मान करना जरूरी है।
दूसरी बात शायद विविधता की है ना? हम स्टेम सेल कह देते हैं लेकिन ये कोई एक चीज नहीं है। भ्रूणीय, वयस्क, IPSC, सबकी अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं। किसी एक बीमारी के लिए जो सही है वो दूसरे के लिए शायद ना हो।
तीसरा, विज्ञान, नैतिकता और नीति का संगम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेम सेल का क्षेत्र दिखाता है कि वैज्ञानिक खोजें समाज से कटकर नहीं हो सकती। नैतिक बहसों ने न सिर्फ नियम बनाए बल्कि IPCs जैसी नई खोजों को भी प्रेरित किया। ये दिखाता है कि समाज और विज्ञान एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं।
और चौथा, जिसे आपने वैज्ञानिक भूकंप कहा था, रीप्रोग्रामिंग की क्रांति। IPSCs ने सिर्फ नैतिक दुविधा कम नहीं की बल्कि व्यक्तिगत दवाएं बनाने, बीमारियों को समझने के बिल्कुल नए तरीके दिए। ये वाकई एक गेम चेंजर था।
और पांचवा, जो स्टेम सेल टूरिज्म वाली बात से जुड़ा है, नियमन का महत्व। रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मरीजों की सुरक्षा और विज्ञान की साख बनाए रखने के लिए कड़े नियम, पारदर्शी क्लिनिकल ट्रायल और जिम्मेदार रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। बिना इसके उम्मीदें झूठे दावों में बदल सकती हैं।
क्या स्लैक के काम से कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो इन बातों को और यादगार बनाते हों? कुछ कोट करने लायक बातें, जैसा कहते हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे एक विचार जो उनकी संतुलित सोच को दिखाता है, स्टेम सेल कोई जादुई गोली नहीं बल्कि अभूतपूर्व क्षमता वाले सटीक जैविक उपकरण है। ये हमें अति उत्साह और निराशा दोनों से बचाता है। हमें इन्हें शक्तिशाली टूल्स की तरह देखना है जिन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना सीखना होगा।
एक और जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो समय के बारे में है। स्टेम सेल रिसर्च में प्रयोगशाला से मरीज तक का सफर महीनों या सालों में नहीं बल्कि दशकों के सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक काम में तय होता है। ये हमें धैर्य रखना सिखाता है। आजकल की दुनिया में ये याद रखना जरूरी है।
बिल्कुल। तीसरा, जो कोशिकाओं के व्यवहार को समझने की कुंजी है। हर स्टेम सेल अपने आसपास के खास सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो एनवायरनमेंट या निश में रहती है और यही माहौल उसकी किस्मत तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब सिर्फ कोशिका डाल देना काफी नहीं, उसे सही माहौल देना भी उतना ही जरूरी है।
ये बात तो है।
और IPSCs पर वो बात। IPSCs के विकास ने सिर्फ नैतिक समस्या हल नहीं की, इसने शोध और उपचार के ऐसे नए रास्ते खोले जो अकेले भ्रूणीय स्टेम सेल से शायद संभव नहीं थे। ये दिखाता है कि कैसे चुनौतियां और नैतिक सीमाएं भी विज्ञान को अप्रत्याशित दिशाओं में आगे बढ़ा सकती हैं।
हाँ, ये दिलचस्प है।
और अंत में एक बड़ा दृष्टिकोण। स्टेम सेल जीव विज्ञान में हम सिर्फ कोशिकाओं का अध्ययन नहीं कर रहे, हम जीवन, विकास, मरम्मत और उपचार के मूलभूत सिद्धांतों की जांच कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये शोध कितना बुनियादी और महत्वपूर्ण है।
ये सारी जानकारी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक आम इंसान के लिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में, इसका क्या मतलब है? हम इस ज्ञान का क्या करें?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है बेहतर स्वास्थ्य साक्षरता, हेल्थ लिटरेसी। अब जब हम स्टेम सेल से जुड़े किसी इलाज या खबर के बारे में सुनेंगे तो हम ज्यादा जागरूक सवाल पूछ सकते हैं। भाई, कौन सी स्टेम सेल इस्तेमाल हुई? क्या ये सिद्ध हो चुका है? किस स्टेज का शोध है? किसने मंजूरी दी है?
हाँ।
ये हमें झूठे दावों और खतरनाक स्टेम सेल टूरिज्म से बचाएगा। ये आज के सूचना के जमाने में बहुत जरूरी स्किल है।
और शायद ये हमें अपने शरीर को बेहतर समझने में भी मदद करता है।
कि फंडिंग या नियमन जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक बहस हो तो हम ज्यादा जानकारी के साथ अपनी राय बना सकते हैं और उसमें हिस्सा ले सकते हैं।
और जाहिर है भविष्य में जब कोई नई स्टेम सेल आधारित थेरेपी आएगी तो हम उसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि वो क्या है और कैसे काम करती है। इस पूरी बातचीत में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली बात थी वो ये कि कैसे एक बड़ी नैतिक चुनौती, वो भ्रूणीय स्टेम सेल वाली, उसने अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी वैज्ञानिक खोज यानी IPSCs को जन्म दिया जो शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रही है। विज्ञान वाकई सीधी रेखा में नहीं चलता, कमाल है।
और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक स्लैक का वो संतुलन और यथार्थवाद है। उम्मीद रखना जरूरी है क्योंकि संभावनाएं वाकई बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही वैज्ञानिक प्रक्रिया की कठोरता, नियमन की जरूरत और धीमी प्रगति की वास्तविकता को समझना भी उतना ही जरूरी है।
ये विज्ञान और समाज के साथ मिलकर सावधानी से आगे बढ़ने का मामला है।
बिल्कुल।
और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जिस दिन हम कोशिकाओं के भाग्य को नियंत्रित करने में सचमुच महारत हासिल कर लेंगे, चाहे वो IPSCs के जरिए हो या किसी और तरीके से, उस दिन उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों का क्या भविष्य होगा, ये कल्पना ही रोमांचक है और थोड़ी डरावनी भी। एक ऐसा सवाल जिस पर आने वाली पीढ़ियां जरूर विचार करेंगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।